नमस्कार भारत, 7 नवंबर गुरुवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की अगले हफ्ते से होगी सार्वजनिक सुनवाई।
So those open hearings will be an opportunity for the American people to...
दिल्ली में 100 रुपए किलो कैसे पहुंच गए प्याज के दाम।
अगर बारिश दिन में शुरू हो जाती तो मंडी में माल जो जितने तादाद में आना चाहिए उतना आता नहीं, उस दिन दाम बढ़ जाते।
और दुनिया जहान में इराक में क्यों जान देने को तैयार हैं व्यवस्था विरोधी प्रदर्शनकारी।
अंदरूनी हालात वहाँ बदतर से बदतर हो रहे हैं। दूसरी वजह ईरान के खिलाफ मुजाहरे बड़े पैमाने पर हो रहे हैं।
अखबारों की समीक्षा भी होगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। डेमोक्रेट सांसदों ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच में एक गवाह के बयान का ब्यौरा जारी किया है। पूर्व अमरीकी राजदूत विलियम टेलर ने पिछले महीने ये गवाही दी थी। साथ ही महाभियोग की जांच का नेतृत्व कर रहे डेमोक्रेटिक सांसद एडम शिफ ने कहा है कि इस मामले में पहली सार्वजनिक सुनवाई अगले हफ्ते शुरू होगी। मेक्सिको में अधिकारियों का कहना है कि मोरमोन परिवार पर हमले के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तरी मेक्सिको में संदिग्ध ड्रग माफिया के हमले में मोरमोन परिवार के 6 बच्चों और 3 महिलाओं समेत कम से कम 9 अमरीकी नागरिकों की मौत हो गई थी। इस हमले में एक 13 साल के बच्चे की जान बच गई और उसने कुछ और बच्चों को भी बचाया। बच्चा मदद मांगने के लिए करीब 20 किलोमीटर तक पैदल चला। वहीं मेक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो एब्राड ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मेक्सिको और अमेरिका में इस घटना को लेकर विवाद होगा। मुझे उम्मीद नहीं है कि इस मसले पर मेक्सिको और अमेरिका के बीच असहमति होगी। यह एक द्विराष्ट्रीय समुदाय है और हम मिलकर इस मामले में कार्रवाई करेंगे। ये थे मेक्सिको के विदेश मंत्री के शब्द। चिली की मुख्य डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि पुलिस की रबड़ की गोलियां लगने से 180 से ज्यादा लोगों की आंखों में गंभीर चोटें आई हैं। चिली में मेट्रो किराए में वृद्धि और आर्थिक असमानता के खिलाफ पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल लोगों को ये चोटें लगी हैं। विरोध प्रदर्शन के चलते अब चिली सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की योजना को वापस ले लिया है। साथ ही राष्ट्रपति सेबेस्टिन पिनियेरा ने कहा है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों और सैन्यकर्मियों पर मुकदमा चलाया जाए। पुलिस और सेना द्वारा शक्तियों के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर उतनी ही ताकत और कठोरता से जांच की जाएगी और अदालतें फैसला सुनाएंगी जितनी कठोरता दंगाइयों के साथ दिखाई जाती है। ये थे चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टिन पिनियेरा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन की मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के उप प्रमुख टॉम वॉटसन ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। साथ ही कहा है कि वो अगले महीने होने जा रहे चुनाव में नहीं खड़े होंगे। हालांकि वो अब भी अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने इस फैसले के पीछे निजी कारण बताया है। टॉम वॉटसन अक्सर लेबर पार्टी के प्रमुख जेरेमी कॉर्बिन के करीबी सहयोगियों के साथ विवादों में भी रहे हैं। उन्होंने ये घोषणा उस दिन की है जब ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत हुई है। सोने का खनन करने वाली कनाडाई कंपनी सेमाफो के लिए कामगारों को ले जा रहे एक काफिले पर बुर्किना फासो में हुए हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय गवर्नर के मुताबिक इस हमले में 60 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कामगारों को ले जा रहा वाहन पहले एक विस्फोटक से टकराया और फिर उस पर गोलीबारी की गई। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक उनके द्वारा मांगी गई सूचना के अनुरोध को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने अदालत से अपील की है कि वो फेसबुक को निजता और यूजर के डाटा तक तीसरी पार्टी की पहुंच से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दे। कंपनी ने फिलहाल इन आरोपों का जवाब नहीं दिया है। करीब 1,20,00,000 साल पहले यूरोप में पाए जाने वाले एक बंदर के जीवाश्म मिले हैं। इनसे पता चलता है कि इंसानों के पूर्वजों ने उस वक्त से बहुत पहले 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था, जो अभी तक माना जाता है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप जानते हैं कि उन पर अपने प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन के खिलाफ जांच करने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाने का आरोप है, और इस सिलसिले में महाभियोग की जांच चल रही है। अब जांचकर्ताओं ने कहा है कि अगले हफ्ते से इस मामले की सुनवाई सार्वजनिक होगी। अब तक ये जांच बंद दरवाजों के भीतर हो रही थी। इसके अलावा एक गवाह के बयान का ब्यौरा भी सार्वजनिक किया गया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए कमलेश मठेनी से।
डेमोक्रेट सांसदों ने यूक्रेन में पूर्व अमरीकी राजदूत द्वारा महाभियोग की जाँच में दी गई गवाही का ब्यौरा जारी किया है। पिछले महीने गवाही देने वाले पूर्व अमरीकी राजदूत विलियम टेलर इस मामले के पहले सार्वजनिक गवाह भी थे। गवाही की इस प्रति के मुताबिक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की सैन्य मदद पर तब तक रोक लगा दी थी जब तक कि यूक्रेन सरकार ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ जाँच की घोषणा सार्वजनिक नहीं कर दी थी। इससे पहले एक अन्य वरिष्ठ अमरीकी राजनयिक की गवाही की प्रति भी जारी की गई थी जिसमें भी ट्रंप प्रशासन पर इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच का नेतृत्व कर रहे डेमोक्रेट सांसद एडम शिफ ने कहा है कि इस मामले में पहली सार्वजनिक सुनवाई अगले हफ्ते बुधवार को शुरू होगी। एडम शिफ सदन की जाँच समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि इस मामले में सुनवाई अगले हफ्ते बुधवार से होगी जिसमें विलियम टेलर को बयान देने के लिए बुलाया जाएगा। इसके दो दिनों बाद एक और पूर्व राजदूत मरिया योवानोविच को गवाही के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुनवाई से अमेरिका के लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सबूतों की मजबूती का खुद फैसला कर पाएंगे।
I think you will see throughout the course of the testimony, not only their testimony, but many others.
आप इन दोनों के अलावा सभी गवाहियों के दौरान देखेंगे कि महत्वपूर्ण तथ्यों पर बहस नहीं की जा सकती। इसलिए ये खुली सुनवाई अमेरिका के लोगों के लिए मौका होगी कि वो गवाहों को देखें और उनकी विश्वसनीयता पर खुद फैसला लें। साथ ही राष्ट्रपति के गलत कामों के बारे में सीधे तौर पर जानें। ये थे अमरीकी संसद में जांच समिति के अध्यक्ष। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के दावों की पड़ताल करने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया था। इस मामले में विसल ब्लोअर की शिकायत आने के बाद राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की शुरुआत की गई। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन आरोपों से इनकार करते हैं।
ब्यौरा सुना रही थी कमलेश मठेनी। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर अब तक गतिरोध नहीं टूट सका है। शनिवार को पिछली विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और आज शिवसेना के विधायकों की बैठक संभावित है। कहा जा रहा है कि आज इस दिशा में कुछ प्रगति हो सकती है। राज्य में सरकार गठन के संबंध में जो कवायद चल रही है उसकी जानकारी देने के लिए कार्यक्रम में मुंबई से शामिल हो रहे हैं बीबीसी मराठी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर। मयूरेश, संक्षेप में बताएं कि आज क्या हो सकता है, किन बैठकों पर और किन मुलाकातों पर नजरें होंगी?
आज दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो शिवसेना जो अब तक बीजेपी के साथ सरकार में जाने का मन नहीं बना पाई है, उद्धव ठाकरे ने सारे जो शिवसेना के चुनकर आए हुए विधायक हैं उनकी एक बैठक बुलाई है और शायद उसमें चर्चा हो सकती है कि क्या शिवसेना का अगला कदम होगा, क्या वो सरकार के साथ जाएगी कि ना जाएगी। ये बातें ये भी हो रही हैं कि शायद शिवसेना अब भी सरकार में ना जाए और किसी भी तरह के उनके विधायक बीजेपी या कोई दूसरा ना ले, इसलिए बात ये हो रही है कि वो शायद सभी MLAs को एक जगह पे रखें किसी अनजानी जगह पे जहाँ पे उनके MLAs को कोई कांटेक्ट ना कर सके। दूसरी बार ये हो रहा है कि बीजेपी जो है उनके कुछ नेता जो है वो आज गवर्नर से मिलने जा रहे हैं। उनकी भी एक सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बाद में वो गवर्नर को मिलेंगे। तो क्या बीजेपी स्टिक क्लेम जो सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, इसके ऊपर अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर वो करती हैं तो उन्होंने उनको अल्पमत की सरकार स्थापन करनी पड़ेगी क्योंकि 9 तारीख तक सरकार आनी जरूरी है, नहीं तो सस्पेंडेड एनिमेशन में चला जाएगा और शायद प्रेसिडेंशियल रूल महाराष्ट्र में आ सकता है। तो बीजेपी आज कुछ तो डिसीजन जो भी लेगी वो भी आज अहम चीज होगी।
बहुत शुक्रिया मयूरेश कोन्नूर, हमसे जुड़े थे मुंबई से। उधर करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने की तारीख करीब आ रही है लेकिन पाकिस्तान की ओर से उद्घाटन समारोह के लिए जारी गीतों पर भारत में विवाद हो गया है। इन गीतों के वीडियो में अलगाववादी नेता भिंडरावाले की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।
वीडियो तो नहीं है, तस्वीर देखी है मैंने, एंड मैं पहले से ही कह रहा हूँ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जिस तरीके से वो कर रहे हैं, हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। एक तरफ हमें प्यार दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे।
एक तरफ प्यार दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अमरिंदर सिंह का पाकिस्तान सरकार पर आरोप है। इस गीत में जो पोस्टर दिखाया गया है उस पर जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर दिखाई देती है। अलगाववादी नेता भिंडरावाले 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए थे। इस पोस्टर में रेफरेंडम 2020 भी लिखा है। अलग खालिस्तान के समर्थक जनमत संग्रह की बात करते रहे हैं। इस पोस्टर में अलगाववादी शाहबेग सिंह और अमरीक सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। इस विवाद पर पाकिस्तान की सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है, आई भी है या नहीं, और इस बारे में वहां क्या चर्चा है, जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने इस्लामाबाद में बीबीसी उर्दू संवाददाता ताहिर इमरान से बात की।
पाकिस्तान में अभी तक इस बारे में कोई बातचीत सामने नहीं आई, ना ही फौज की तरफ से कोई बयान आया है। पाकिस्तानी ट्विटर पर करतारपुर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन उसमें भी मेनली करतारपुर के हवाले से कि करतारपुर की ओपनिंग हो रही है, लेकिन अगर उस ट्रेंड में भी देखा जाए तो बहुत सारी ट्वीट्स जो हैं वो इंडिया की हैं, इंडिया के लोग जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, पाकिस्तानी उस बारे में बिल्कुल खामोश है अभी फिलहाल।
और पाकिस्तान के मीडिया में इस पर कुछ चर्चा है?
अभी तक शायद पाकिस्तानी मीडिया को इस बारे में इतनी समझ नहीं आई और कह सकते हैं उसको अभी तक अंदाजा नहीं है, लेकिन मसलन एक सहाफी हैं जवेरिया सदीक, उन्होंने ट्वीट की हुई है कि जी करतारपुर जो है ये ओपन होगा, लेकिन उसके बारे में जो है वो एक स्पेशल गाना रिलीज किया गया है उसके मैसेज को हाईलाइट करने के लिए। तो इस तरह की ट्वीट उस गाने को प्रमोट करने के लिए कुछ अकाउंट जो है वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो कॉन्ट्रोवर्सी है इसके ऊपर अभी तक पाकिस्तान में किसी किस्म की बात नहीं हो रही।
अच्छा इमरान, ये बताइए कि 9 नवंबर को खुलेगा ये कॉरिडोर, इसे लेकर वहाँ रहने वाला जो सिख समुदाय है और उससे इतर, उससे अलग भी क्या किसी तरह की चर्चाएं हैं, किसी तरह का उत्साह देखा जा रहा है?
जी, पाकिस्तानी मीडिया पे बहुत एक्साइटमेंट है। हमारी साथी भी गई हुई थी करतारपुर जो गुरुद्वारा है वहाँ पे, और पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्टर्स भी कुछ गए हुए थे जो वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उस हवाले से मीडिया में बहुत इसकी चर्चा है, मीडिया में इसके बारे में बात भी हो रही है। कुछ जो मजहबी हलके हैं जो कि हुकूमत के साथ मुत्तफिक नहीं है, वो इसको अहमदियों के साथ और कादियान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमूमी तौर पे पाकिस्तान में इसको बड़ा पॉजिटिव लिया जा रहा है। जो यहाँ पे सिख हैं जो दुनिया से आए हैं बाहर, जैसे कनाडा से सिख एक जो है वो अपनी बस लेके आए हैं, तो उस तरह की चीजें बहुत शेयर की जाती हैं, लोग बड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत अरसे के बाद लोग हमारे मुल्क में आ रहे हैं।
लेकिन जनरल सिंह भिंडरावाला और उनके उसी तरह के जो समर्थक हैं, जो खालिस्तान के सपोर्टर्स हैं, उनको लेकर किसी तरह की चर्चा अभी आम नहीं हुई है?
नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारी जो ये मौजूदा जनरेशन सोशल मीडिया की जनरेशन है जो इस पे अक्सरियती लोग हैं, शायद इनके इल्म में भी नहीं होगा कि ये लोग कौन है, तो इतनी उनकी मालूमात नहीं है खालिस्तान तहरीक के बारे में भी और इन लोगों के बारे में भी। लेकिन शायद कुछ पता नहीं अगले चंद घंटों में हो सकता है अगर इस पे फौज रिस्पॉन्ड करे या हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए तो फिर सोशल मीडिया पे लोग या जो उनकी राय से इत्तेफाक करते हैं वो शायद इसके ऊपर फिर बात करना शुरू करें, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कोई रद्द अमल सामने नहीं आ रहा।
जानकारी दे रहे थे इस्लामाबाद में बीबीसी उर्दू संवाददाता ताहिर इमरान। अब बात प्याज के दामों की। दिल्ली में प्याज के दाम 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि देश में पर्याप्त प्याज है लेकिन सरकार कालाबाजारी को संरक्षण दे रही है। लेकिन किसानों का क्या कहना है? हफ्ते भर पहले तक जो प्याज 40 रुपये किलो बिक रहा था उसके दाम अचानक क्यों बढ़ गए? बीबीसी संवाददाता भूमिका राय की रिपोर्ट।
हमको बहुत परेशानी होती है, आम लोग हैं कहाँ तक मतलब महंगाई बर्दाश्त करेंगे, प्याज के दाम इतने बेदराज बढ़ गए हैं, हम जैसे आदमी तो इतनी महंगी चीज खा नहीं सकते।
प्याज के दाम राजनीति को प्रभावित करने के लिए जाने जाते हैं। साल 1980 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दोबारा सत्ता दिलाने से लेकर 1998 में बीजेपी को विधानसभा चुनावों में नुकसान पहुंचाने तक प्याज की भूमिका रही। उसके अलावा साल 2010 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को भी प्याज की बढ़ी कीमतों की वजह से लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी, और अब एक बार फिर प्याज के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। यहां महाराष्ट्र का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र के लासलगांव में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है, और देश में प्याज किस कीमत पर बिकेगा ये काफी कुछ यहीं से तय होता है। लासलगांव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के अध्यक्ष जयदत्त होलकर का कहना है कि महाराष्ट्र में प्याज किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ी है।
स्थिति क्या रही है महाराष्ट्र में, तो पूरा बारिश शुरू है। तो अभी जो प्याज किसानों के पास गोडाउन में था उसमें भी काफी उसका खराब हो चुका है प्याज, वो मंडी में लाने के लिए भी दिक्कत होती है। अगर बारिश दिन में शुरू हो जाती है तो मंडी में माल जो जितने तादाद में आना चाहिए उतना आता नहीं, उस दिन दाम बढ़ जाते हैं। दाम बढ़ गए तो कभी कभी ज्यादा एरोल हो जाते, दाम नीचे भी दो 300 से 400 भी नीचे भी आ जाते हैं। तो ये सब बारिश की वजह से चल रहा है, नुकसान भी बहुत हुआ है। यहाँ पे जो नया प्याज आने वाला था उसका भी नुकसान यहाँ पे हुआ है, तो इसलिए दाम बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको।
लेकिन क्या सिर्फ महाराष्ट्र के प्याज खराब हो जाने से ये दाम बढ़े हैं? जवाब है नहीं। भले ही भारत में सबसे ज्यादा प्याज की पैदावार नासिक में होती हो, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक से भी प्याज मंडियों में आती है। इस बार मौसम की मार महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश और कर्नाटक को भी झेलनी पड़ी है। मांग तो उतनी ही है, और या यूं कहें कि बढ़ी ही होगी, लेकिन आपूर्ति घटी है तो दाम क्यों बढ़े समझा जा सकता है। आजादपुर मंडी के असिस्टेंट सेक्रेटरी सुशील कुमार कहते हैं कि राजस्थान से प्याज आ रही है जिससे आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
हमारे यहाँ पे जैसे अराइवल जो बढ़ गई है ना मैडम, 1126 टन हो चुकी है, और राजस्थान केवल राजस्थान से 846 टन जो है ना आज अराइवल आई है। इससे लग रहा है कि जिस तरह राजस्थान से अराइवल आई है तो जल्दी जो है ना कवर हो जाएगा।
बीबीसी की एक खबर में नेफेड के हवाले से बताया गया था कि बारिश ने न सिर्फ इस साल उगने वाले प्याज को खराब किया है बल्कि स्टॉक में रखे लगभग 35% प्याज को भी नष्ट कर दिया है। पर क्या ये सिर्फ मौसम की मार की ही वजह से है?
वो बार बार हस्तक्षेप किया जाता है, इंटरफेयर किया जाता है प्याज के बारे में, तो इसलिए वो जो दाम उनको अपेक्षित होता है किसानों को मिलते नहीं है।
एक सवाल ये भी है कि प्याज के अलावा जब दूसरी सब्जियों के दाम बढ़ते हैं तो इतना हल्ला क्यों नहीं होता? इसका जवाब प्याज की उपयोगिता में छिपा हुआ है। ज्यादातर भारतीय व्यंजनों में प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। सेहत के लिहाज से तो ये बेमिसाल है, लेकिन फिलहाल इसकी बढ़ी कीमत जेब पर भारी पड़ रही है। भूमिका राय, बीबीसी दिल्ली।
और अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। कमलेश मठेनी आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं। कमलेश बताइए।
कुलदीप, हमारे हाथ में इंडियन एक्सप्रेस है जिसमें जो पहली खबर है वो अयोध्या मामले से जुड़ी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ एक बैठक की थी जिसमें उन्होंने कहा है कि मंत्री गैर जरूरी बयानबाजी से बचें। साथ ही उन्होंने जोर दिया है कि फैसला चाहे जो हो सौहार्द और सद्भाव का माहौल बनाए रखें। इसके अलावा इसी अखबार में खबर है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय में CISF की स्थायी तैनाती के लिए पत्र लिखा है। अखबार लिखता है कि किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थायी तैनाती सुरक्षा बल की पहली बार है। इसके अलावा एक खबर और है कि हिंदुस्तान टाइम्स में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को घोषणा की है कि रियल एस्टेट में अटकी पड़ी परियोजनाओं के लिए सरकार 25,000 करोड़ रुपए का एक वैकल्पिक निवेश फंड देगी, और ये खबर लगभग सभी अखबारों में है और सबने अलग अलग इस हेडलाइन के साथ इसको छापा हुआ है। हमारे हाथ में अब जनसत्ता है जिसमें करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से जुड़ी खबर है जो हमने भी जिसका जिक्र किया था। इसमें जो वीडियो जारी हुआ है उसके पोस्टर में अलगाववादी नेता जनरल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर है। इसके अलावा भारत प्रशासित कश्मीर के कुलगाम की खबर है जहां चरमपंथियों ने दो निजी स्कूलों की इमारत को आग लगा दी।
बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए कमलेश मठेनी। इराक में कई दिनों से राजधानी बगदाद समेत कई शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में अब तक 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और करीब 5,000 लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नागरिक सुविधाओं की कमी के कारण सरकार का विरोध कर रहे हैं। इराक में क्यों हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन और क्यों लोग मौजूदा व्यवस्था से छुटकारा पाना चाहते हैं, दुनिया जहान में आज इसी की पड़ताल कर रहे हैं इकबाल अहमद।
दुनिया जहान। ये आवाजें थी इराक के शहर करबला में स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास में घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों की और सुरक्षा कर्मियों की जवाबी कार्रवाई की। रविवार को हुई इस घटना में सुरक्षा कर्मियों की गोली से 3 प्रदर्शनकारी मारे गए, लेकिन इराक की मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों की मौत का सिलसिला रविवार को नहीं शुरू हुआ। इसकी शुरुआत हुई 1 अक्टूबर से, जब प्रदर्शनकारी राजधानी बगदाद में बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए। विरोध प्रदर्शन और हिंसा की ये आग दक्षिणी इराक के कई शहरों में फैल गई, लेकिन सरकार ने लोगों के प्रदर्शन को सख्ती से कुचल दिया। प्रदर्शन और हिंसा का दूसरा दौर 25 अक्टूबर को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी की सत्ता के एक साल पूरे हुए थे। 1 अक्टूबर से शुरू हुए इन प्रदर्शनों में अब तक 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 5000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी और बहुत ही खराब नागरिक सुविधाओं के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। राष्ट्रपति बरहाम सालेह ने कहा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को चुन लेने और नए चुनावी कानून का ड्राफ्ट तैयार होने के साथ ही मौजूदा प्रधानमंत्री इस्तीफा देने को तैयार हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी सिर्फ इस्तीफा नहीं चाहते हैं, बकौल उनके वो पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के कारण लोगों का गुस्सा है जो इराक के कई शहरों में फूट रहा है, या इसके पीछे कुछ और है? मध्य पूर्व के विशेषज्ञ और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा चुके प्रोफेसर ए.के. पाशा के अनुसार इसके कई कारण हैं।
देखिए, इराक में जो भी हालात हो रहे हैं वहाँ बहुत संगीन है। इसमें कई वजूहात हैं। एक तो अंदरूनी हालात वहाँ बदतर से बदतर हो रहे हैं। दूसरी वजह, ईरान के खिलाफ मुजाहरे बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। तीसरा जो है, सऊदी अरब और इमारात मिलके अंदरूनी मामलों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और चौथा, अमेरिका और इस्लामिक स्टेट और कुर्दों के बीच और तुर्की का मदाखलत इराक में है। इन सब को लेके और इक्तसादी हालत वहाँ बहुत खराब हो गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन और बिजली, पानी और दूसरे मसले जो कई सालों से लोग परेशान हैं, उन सब को लेके ये शोले उभर गए हैं।
लेकिन क्या केवल भ्रष्टाचार या बेरोजगारी और महंगाई के कारण हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि लोग सुरक्षा कर्मियों की गोली खाने के लिए भी तैयार हैं? जॉर्डन और लीबिया में भारत के राजदूत रह चुके पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुनायत के अनुसार इराक में आज जो कुछ हो रहा है उसकी जड़ें बहुत हद तक 2003 में हैं, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत कहते हैं,
इस एरी पूरे रीजन के अंदर सबसे बड़ी शुरुआत, चाहे वो टेररिज्म की हो या इनस्टेबिलिटी की हो, ये सब हुई है 2003 के बाद से ही। और उस वक्त में इराक एक सेकुलर मुल्क होता था, लेकिन जब ये लड़ाई हुई उसके बाद में, अब लोग तो ये कहते हैं, इस तरह से मानना है काफी, कि अमेरिका ने इराक को ईरान को प्लेटर में रख के दे दिया, क्योंकि वहां पे जो शिया सुन्नी का जो झगड़ा है वो सबको और ज्यादा हवा मिल गई। कन्फेशनल सिस्टम जो 2003 के अमेरिकन इन्वेजन के बाद में हुआ था, उससे ये प्रॉब्लम जो है वहां की, इस जो पॉलिटिकल की प्रॉब्लम है उस कंट्री में, वो यही है। अब लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम इराक को, इराकियों के लिए, इराक के द्वारा आगे बढ़े।
ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला खामेनेई ने इन सब के लिए अमेरिका और मध्य पूर्व के दूसरे देशों को जिम्मेदार ठहराया है। प्रोफेसर पाशा का भी मानना है कि इराक में विदेशी हस्तक्षेप बहुत है। वो कहते हैं,
क्योंकि अमेरिका ईरान पे हमला करने से गुरेज रहा, जो सऊदी अरेबिया और इमारात और इसराइल चाहते थे, तो अब ये इनडायरेक्ट तरीका अपनाए हैं। ये 3-4 मुल्क, अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरेबिया, इमारात मिलके इराक और लेबनान में, अगर आप गौर से देखें, इन दोनों ममालिकों में जो डिमांड्स हैं एकजुटता है, सेम है, और दोनों में भी हिजबुल्ला के खिलाफ और यहाँ ईरान के खिलाफ इराक में मुजाहरे हो रहे हैं।
लेकिन इराक में ये पहली बार हो रहा है कि शिया बहुल इलाके में ईरान के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, ईरानी दफ्तरों पर हमले कर रहे हैं और ईरान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इसका कारण बताते हुए प्रोफेसर पाशा कहते हैं,
2.5 लाख सीरिया के रेफ्यूजीज हैं और 10-12 लाख इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं। उनमें कम से कम $100 अरब की का खर्च आने वाला है। तो इराकी गवर्नमेंट इन चीजों में मुलविज है, सुन्नी में, क्योंकि सुन्नी इलाके में जो इनसिक्योरिटी थी उसको लेके इस्लामिक स्टेट उभर के निकला और अमेरिका भी वहाँ उलझ गया। तो शिया एरिया को नेगलेक्ट करके धीरे धीरे ये ऐसे हालात पैदा हुए।
इराक के अलावा लिबनान में भी पिछले कई दिनों से लोग सड़कों पर हैं। लोगों ने सैकड़ों किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाई और कई लोग कह रहे थे कि उन्हें पहली बार लिबनानी नागरिक होने पर गर्व हो रहा है। तो क्या इन सबको नया या दूसरा अरब स्प्रिंग कहा जा सकता है? एम्बेसडर अनिल त्रुगनायत तो इसे दूसरा अरब स्प्रिंग ही मानते हैं।
एक तरह का एक अरब स्प्रिंग 2.0 की एक शुरुआत है, जहां लोग जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है, जो उनका जो लीडरशिप है, उससे बहुत खफा है। और खफा इसलिए है कि जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, उस सब का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया।
लेकिन प्रोफेसर एके पाशा इसे पूरी तरह सहमत नहीं है।
देखिए, ये तो अब फिलहाल लेबनान और इराक में ही हो रहा है, कहीं और इसकी पकड़ नहीं है। मिस्र में छोटे मोटे मुजाहरे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर दोनों इलाकों में की प्लेयर सऊदी अरेबिया है, जिसमें इसराइल और अमेरिका भी शामिल है, मुत्तहिदा इमारात भी।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा? प्रोफेसर पाशा के अनुसार आने वाला समय और खराब हो सकता है।
कुछ अरसे तक ये मुजाहरे चलते रहेंगे और मेरे ख्याल से ये कोल्ड वॉर जो ईरान और सऊदी अरब के बीच में हो रही है, जिसका शिकार इराक और लेबनान और यमन भी हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे बढ़ के दूसरे देशों में भी फैलने की संभावना है। शायद सऊदी अरब और बहरीन या जॉर्डन भी मुमकिन या शामिल हो सकता है।
ये दूसरा अरब स्प्रिंग है या नहीं, इराक में लोग अपने हक के लिए सड़कों पर है या इराक बाहरी शक्तियों की लड़ाई का केवल एक मोहरा है, कुछ भी बहुत दावे से कहना मुश्किल है। जो सच है वो ये कि बगदाद की सड़कों पर आम लोगों का खून बह रहा है, और कोई एक बात अगर तारीफ के लायक है तो वो है वहाँ के ऑटो चलाने वाले, जो किसी तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। बाल अहमद, BBC, दिल्ली।
दुनिया जहान, इस बार का आपको कैसा लगा हमें लिखिएगा जरूर। और अब सुनते हैं खेल की दुनिया का हाल।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह, और आज सबसे पहले बात क्रिकेट की करते हैं। बांग्लादेश ने बीते रविवार भारत को पहले T20 मैच में मात दे 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। दोनों टीमों के बीच अब दूसरा मैच आज यानी गुरुवार 7 नवंबर को राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेला जाएगा, और भारत के पास सीरीज में वापसी करने का ये आखिरी मौका है। भारत इस मैच में अगर जीत हासिल कर लेता है तो 10 तारीख को नागपुर में होने वाला तीसरा मैच रोमांचक हो जाएगा। और अब बात निशानेबाजी की करते हैं। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने हाल ही में दोहा में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल गेम में स्वर्ण पदक जीता है। मनु भाकर ने 14वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। खेल समाचारों में आज इतना ही।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए कमलेश मठेनी से।
BBC समाचार। डेमोक्रेट सांसदों ने अमरीकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की जांच में एक गवाह के बयान का ब्यौरा जारी किया है। पूर्व अमरीकी राजदूत विलियम टेलर ने पिछले महीने ये गवाही दी थी। मेक्सिको में अधिकारियों का कहना है कि मोरमोन परिवार पर हमले के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस हमले में एक 13 साल के बच्चे की जान बच गई है और उसने कुछ और बच्चों को भी बचाया है। चिली की मुख्य डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि पुलिस की रबड़ की गोलियां लगने से 180 से ज़्यादा लोगों की आंखों में गंभीर चोटें आई हैं। चिली में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल लोगों को ये चोटें लगी हैं। ब्रिटेन की मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के उप प्रमुख टॉम वॉटसन ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है, साथ ही कहा है कि वो अगले महीने होने जा रहे चुनावों में नहीं खड़े होंगे। सोने का खनन करने वाली कनाडाई कंपनी सेमाफो के लिए कामगारों को ले जा रहे एक काफिले पर बुर्किना फासो में हुए हमले में 37 लोगों की मौत हो गई है। BBC समाचार।
नमस्कार, भारत कार्यक्रम में आज इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। तो अब कुलदीप मिश्र को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए बीबीसी के साथ। नमस्कार।